नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क में आप सभी बच्चों एवं श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर राजीव भूगोल शिक्षक चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर। बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ भारत के मिट्टी के अपरदन के कारण मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय। तो जानेंगे कि मिट्टी के अपरदन के क्या कारण हैं। भारत की उन सब ढालू भूमियों पर जहाँ ना तो वन है ना घास के मैदान हैं, और जहाँ कृषि योग्य भूमि की ठीक उसी प्रकार से मेड़बंदी भी नहीं की जाती, वहाँ मिट्टी सदैव कटती रहती है, ये मिट्टी के अपरदन कहलाते हैं। इसके कारण है कृषि के दोषपूर्ण ढंग से होना। दूसरा कारण है पशुओं का अनियंत्रित रूप से चराई, जिससे कि मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। और तीसरा है वनस्पति को नष्ट करना। चौथा कारण है तेज शुष्क पवनों का चलना। और पांचवा अन्य कारण में कह सकते हैं कि समानांतर जुताई ना होना, दोष युक्त फसल चक्र अपनाने के कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है। वहीं अब हम लोग जानेंगे मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं। भूमि संरक्षण अर्थात मृदा संरक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है पशुओं की चराई पर नियंत्रण एवं वृक्षारोपण कर। दूसरा है भूमि को परती छोड़कर, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। तीसरा है जल के वेग की रोकथाम करना। और चौथा है बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन में कमी लाना। पांचवा है खाई खोदना या मेड़बंदी करना। छठा है चारागाहों का विकास करना। सातवां है भूमि को वनस्पति से ढकना। और अंत में है वनस्पति को सड़ने देना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़े। वहीं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय निम्नलिखित हैं। फसल का हेर फेर करना, यानी दो मुख्य फसलों के मोटे अनाजों के उपज के बीच दलहन की खेती आप कर सकते हैं, जिससे फसल चक्र का नियम लागू होता है। दूसरा है भूमि को परती छोड़ना, जिससे कीड़े मकोड़े खेतों में उगने वाले वनस्पतियों के सड़ने के बाद उसे मिट्टी के रूप में बना देती है, ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है, जिससे उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तीसरा है उपजाऊ मिट्टी का परत बिछाना, अर्थात ऐसी गोबर खाद वगैरह को आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की उपज बढ़ती है। चौथा है गहरी जुताई करना, जिससे कि मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए। और पांचवा है कृषि के प्रकार का निर्धारण। यह भी बहुत किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वह फसल का चक्रण किस प्रकार करते हैं। कृषि के प्रकार का निर्धारण मिट्टी के प्रकार तथा उसकी वर्तमान उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अधिक उपजाऊ मिट्टी में खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, कम उपजाऊ भूमि में मिश्रित वो दलहन की कृषि तथा उपजाऊ मिट्टी वो शुष्क कृषि या सिंचाई आदि की व्यवस्था करके कृषि करनी चाहिए। और अंत में है आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई करना, क्योंकि कृषि भूमि में सिंचाई करते समय ना तो अधिक जल चाहिए और ना ही कम, ताकि भूमि दलदली भी ना बने और सफेद पपड़ी भी ना जम जाए, ताकि लवणता की अधिकता ना हो। अंत में मिट्टी में बच्चों एक बात छूट रहा है, उसे भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा निर्माण एक दीर्घ अवधि की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके निर्माण में सहयोगी कारक मुख्य रूप से मूल जनक चट्टानें हैं, दूसरा उच्चावच है, तीसरा जलवायु है, चौथा वनस्पति एवं जैव अवशेष है, पांचवा अपवाह तंत्र है, और छठा समय या अवधि को भी कहा जा सकता है। वहीं आपके परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो बच्चों, खादर जो है वह प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क मिट्टी है, जबकि बांगर जो है यह उच्च भागों में स्थित प्राचीन बाढ़ क्षेत्रों में बना हुआ भाग है। वहीं दूसरा अंतर कह सकते हैं कि खादर महीन कणों वाला होता है, जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है, जबकि बांगर जो है इसमें अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं तथा उर्वरक तत्वों की कमी रहती है। तीसरा अंतर कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है, जबकि बांगर कृषि में सघन कृषि होती है। वहीं आपके परीक्षा में एक प्रश्न और बराबर पूछा जाता है कि आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानव कृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब में आप लिख सकते हैं कि मोटे कणों वाली उच्च भूमि की मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, जिससे अन उर्वर होती है। महीन कणों वाली लाल तथा पीली मृदा उर्वरक होती है। जलोढ़ मृदाओं में गाद होने के कारण इनमें उर्वरता होती है, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। काली मिट्टी में लंबे समय तक नमी रहती है, इस कारण शुष्क ऋतु में भी फसलें फलती फूलती रहती है। वहीं लेटराइट मृदाओं में लोहे के ऑक्साइड और अल्मुनियम के यौगिक तथा पोटाश अधिक मात्रा में होते हैं, ह्यूमस की मात्रा की कमी रहती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये मृदाएं अनुर्वर होती है। वहीं लवण मृदाएं ऊसर मृदाएं भी कही जाती है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुर्वर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, इनमें लवण की मात्रा अधिक होती है। वहीं वन मृदाओं के विषय में कहा जा सकता है कि ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है, घाटियों में ये दुमटी और पानसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। लवण मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। लवणीय मृदा में जिप्सम डालने से मृदा की उर्वरता बढ़ सकती है। प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता पोषक तत्वों की विद्यमानता पर निर्भर करती है। मृदा में फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, बोरान, ये सभी तत्व मृदा में भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। मृदा की उत्पादकता कई भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। तो बच्चों, हमें सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करे अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।